ناظرین السلام علیکم، میں ارجب باز رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے لیبیا میں عوامی انقلاب اور مغربی اقدامات. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جناظرین، تقریباً ایک ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چلا ہے کہ لیبیا میں عوامی انقلاب اپنا راستہ طے کر رہا ہے. اگرچہ اس دوران لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی کی طرف سے انتہائی بے دردی اپنے ہی شہریوں کو کچلنے اور عوامی مظاہروں کو ناکام بنانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا، لیکن عوامی انقلاب بدستور جاری ہے اور انقلابیوں کو مرحلہ بر مرحلہ کامیابیاں نصیب ہوتی جا رہی ہیں. اس دوران اگرچہ انقلابیوں کو بڑی بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے. گزشتہ ایک مہینے سے لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی کی فوجوں اور ان کے کرائے کے ایجنٹوں کے ہاتھوں عوام کا قتل عام ہو رہا تھا، لیکن مغرب، خاص طور پر امریکہ، نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی. لیکن جب مغرب نے دیکھا کہ اب انقلابی تحریک کامیابی کے قریب اور دہانے تک پہنچ چکی ہے، تو انہوں نے نیٹو کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل سے قرارداد منظور کرا کے لیبیا پر ہوائی حملہ کرنا شروع کر دیا. دلچسپ اور ساتھ ہی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لیبیا کے عوام کی جان کی حفاظت کے لیے وہاں پر ہوائی یا فضائی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو جس طرح سے معمر قذافی کی فوجوں نے لیبیا کے شہریوں کا خون بہایا، نیٹو اور مغربی جنگی طیاروں کے حملوں میں بھی اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم لیبیائی شہریوں کا خون نہیں بہا ہے. اور کل رات امریکی صدر باراک اوباما نے بھی یہی بات دہرائی کہ وہ لیبیائی شہریوں کی جان کی حفاظت کے لیے وہاں کارروائی کر رہے ہیں. جبکہ آج کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ مصراتا شہر میں معمر قذافی کی فوجوں نے کم از کم 142 افراد کو موت کی نیند سلا دیا. اگر امریکی اور مغربی فوجیں یا حکومتیں وہاں پر لیبیائی شہریوں کی جان کی حفاظت کے لیے کارروائی کر رہی ہیں، تو آج مصراتا میں 142 یا 45 شہریوں کو کیسے تحقیق کر دیا گیا. اور بھی بہت سارے سوال جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں. اس وقت چلتے ہیں لندن، اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب جاوید صدیق صاحب. صدیق صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جاوید صدیق صاحب، امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہماری جو شمولیت ہے لیبیا کے خلاف کارروائی میں وہ محدود ہوگی. ان کے خیال میں کیا محدود ہوگی اور آپ جیسے لوگ کتنا محدود سمجھتے ہیں؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ جب عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کرنل قذافی کی ایک طویل ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. 42 سال سے کرنل قذافی جو ہیں اقتدار میں ہیں. 1969 سپتمبر میں وہ اقتدار میں آئے تھے شاہ ادریس کا تختہ الٹ کر. تو ان کے خلاف جو ایک موومنٹ ہے اور ایک تحریک ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن امریکہ اور نیٹو کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایسے لوگ نہ آ جائیں اقتدار میں عوام کی طاقت سے، وہ اپنی خود مختاری کے ساتھ اور اپنی آزادی کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی بنائیں اور وہاں پہ غیر ملکی طاقتوں کو دوڑنے کی اجازت نہ دیں اور ایک انتخاب ہو جس کے نتیجے میں ایک عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہو. اس پروسیس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ انٹروین کریں گے، مداخلت کریں گے. نیٹو نے اور امریکہ نے مل کر یہ کام کیا ہے. लेकिन जैसे आपने कहा कि ये काम है उन्होंने इस तरह से किया है कि अभी तक तो एयर स्ट्राइक्स या हवाई हमलों पर इक्तफा कर रहे हैं वो, और आपको पता है कि जब एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं तो उसके नतीजे में बेगुनाह शहरी भी जो है वो मारे जाते हैं, और इन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में बेशुमार लीबियन शहरी जो है वो मारे जा चुके हैं। क्योंकि इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं होती, इतनी कोई प्रिसीजन जो है वो नहीं होती कि आप कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और क्या वो वाकई फौजी तनसीबात हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, या कि वो शहरी कोई इलाके हैं जहाँ पे आप बम बरसा रहे हैं और मिसाइल जो है वो दाग रहे हैं। तो उसके नतीजे में बड़ी जानी नुकसान जो है वो इनकी फजाई हमलों के नतीजे में हो रहा है। बात कीजिए तो सवाल ये है कि ये जो कोशिश है कि उनको रोका जाए अवाम को एक ऐसी तब्दीली से जो कि वो अपनी ख्वाहिश और अपनी ख्वाब और अपने जो उनके मंसूबे हैं खुद मुख्तार और आज़ाद मुमलिकत बनाने के, उनसे उनको हटाया जाए और जाए आगे लाया जाए ऐसे लोगों को कि जो मगरब की और अमेरिका की मंशा के मुताबिक पॉलिसियाँ चलाएं। तो लगता ये है कि इस वक्त जो है ये मुदाखलत जो है इसी तरह की है, और यहाँ पे उनको सक्सेस जो है वो इस लिहाज से शायद ना हो सके, क्योंकि बहुत से उनके अपने अस्करी मायरीन ये कह रहे हैं कि जब तक वो ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजते, लीबिया के अंदर फौज नहीं भेजेंगे, उनको बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकेगी। वो सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के जरिए और फजाई कुव्वत के जरिए वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन या ज़मीनी हकायक को बदलना चाहते हैं, और उनकी कोशिश है कि वो कर्नल कद्दाफी की जो फौजें हैं और उनके एयरफोर्स और उनके जो मिलिट्री के अड्डे हैं तनसीबात हैं उनको मफलूज कर दें और वो उनके लोगों पर स्ट्राइक ना कर सके, और उसके नतीजे में ये जो मुजाहिदीन ये जो आज़ादी चाहने वाले लोग हैं जो कर्नल कद्दाफी से निजात हासिल करना चाहते हैं वो आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि इस ताकत के जरिए नेटो और अमेरिका की मदद और उनकी पुश्तपनाई के नतीजे में अगर कोई चेंज आती है तो वो जेन्युइन और सही और हकीकी तब्दीली नहीं होगी, फिर ये अपनी मर्जी के लोग वहाँ मुसल्लत करेंगे, और आपको पता है कि लीबिया का तेल जो है वो इन ताकतों का मतमय नज़र है, वो टारगेट है, वो समझते हैं कि लीबिया का जो तेल है वो हमारे मसरफ में रहे और वो तेल की जो सप्लाई है वो वहाँ पर कायम रहे, और उनका एक अपना कोई चुना हुआ आदमी या उनकी मंशा और मर्जी की एक हुकूमत वहाँ पे लीबिया में कायम हो, ये उनका जो गेम प्लान है वो ये लग रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या लीबिया के लोग जो इस वक्त बरसर पैकार हैं, जो इतनी हज़ारों जानें दे चुके हैं, वो क्या नेटो और अमेरिका को वहाँ पे उनकी मुसल्लत करदा किसी क़यादत को तस्लीम करेंगे, या वो चाहेंगे कि उनकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत हो, उनको फ्री और आज़ादी के साथ एक हुकूमत जो है वो मुंतखब करने की इजाज़त दी जाए। मेरा ख्याल है कि वहाँ के लोग इस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं लाहौर जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तर्ज़ निगार प्रोफेसर अताउर रहमान साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी प्रोफेसर साहब, अमरीका की ज़ेर सरकर्दगी मगरबी ताकतों ने यह नारा लगाया है, जैसा कि सदर ओबामा ने कल रात अपने खिताब में कहा कि हम लीबियाई शहरियों की जान के तहफ्फुज़ के लिए मैदान अमल में उतरे हैं और हमने फजाई कार्रवाई का फैसला किया है। एक महीने तक ये लोग कहाँ थे?
देखिए बात यह है कि अमेरिका सदर ओबामा जब आए थे तो उसके बाद उन्होंने नोबल इनाम दिया गया, और नोबल इनाम देने वालों को के वामो गमान में भी ये शामिल नहीं था कि वो जल्द ही उसी तरह की जंगी कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे जिस तरह उनके पेशरो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान और इराक पर फौजी हमले करके किया था। ओबामा इस वक्त जो हैं वो मौजूदा अहद के जॉर्ज बुश का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी उस दौर के तसलसल में कोई कमी वाकया नहीं हुई, और अमरीका के जो हुक्मरान तबका है वो मशरक वस्ता और आलम इस्लाम के हर मका हल ताकत के इस्तेमाल में देख रहा है, और ताकत का इस्तेमाल और उसके हवारी नाटो ममालिक की जानब से इसलिए किया जाता है کہ اور کوئی طریقہ نہیں اس خطے میں امریکہ اور یورپ کی ممالک کے تسلط کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط تر بنانے کا. اگر قذافی کو اس کے عوام پسند نہیں کرتے تو لیبیا کے عوام اپنے ملک کو امریکہ اور یورپ کی ایک کلائنٹ سٹیٹ یا توفیلی ریاست بھی ہرگز ہرگز نہیں بنانا چاہتے. اور وہ جو ان کے تیل کے جو دولت ہے جو اساتذے ہیں انہیں ان ممالک کی دسترس میں نہیں دے دینا چاہتے جو ان کا اصل مقصد ہے. تو اس لحاظ سے یہ لیبیا کے عوام پر جو مصیبت مسلط کی گئی ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہنے دیا گیا, وہ قذافی کی 49 سالہ آمریت اور غیر جمہوری حکومت کو بھی بدلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں. حالانکہ صحیح طریقہ یہ تھا کہ انہیں بغیر کسی طاقت کے استعمال کے بغیر کسی اپنی راہ خود تلاش کرنے کا موقع دیا دیتا, یا اگر یہ طاقتیں مخلص ہوتی لیبیا کے عوام کے ساتھ تو وہ کرنل قذافی پر دباؤ سیاسی ڈال کر اور عوام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کر لے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے نو فلائی زون تو قائم کر دیا گیا ہے لیکن اسی کی آڑ میں وہاں ہوائی حملوں مسلسل کیے جا رہے ہیں. حالانکہ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں اس کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کی من مانی تعبیر کر کے وہاں پر ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں. اگر اس طرح قراردادوں کی تشریح اور توضیح کرنے پہ آ جائیں تو فلسطین اور کشمیر کے بارے میں جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں وہ تو اتنی قطعی ہیں اتنی واضح ہیں اور ان میں تو کسی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا, ان پر تو عمل نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر من مانی تشریح و توضیح کر کے ایک جنگ جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لیبیا کرنل قذافی کے باغیوں کے تسلط میں جو علاقہ ہے اور کچھ تیل کی تنصیبات بھی ان کے تسلط میں آ چکی ہیں لیکن ابھی تک خود مغربی مبصرین یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور انہوں نے عوامی قوتوں کا نمائندہ ہونے کا کوئی ثبوت ابھی تک مہیا نہیں کیا اور زمین پر اتنی بڑی بغاوت یا انسرجنسی یا ایک تحریک اٹھ کھڑی نہیں ہوئی جو کہ صدر قذافی کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دے. یہ اس سطح کی بھی تحریک نہیں جس طریقے تیونس اور مصر میں وجود میں آئی. لیکن آپ دیکھیے تیونس اور مصر میں کیا ہوا ہے, اس نے مبارک چلے گئے, اس سے پہلے علی زین علی چلے گئے لیکن ان کی جگہ کنہوں نے لی, فوج ہے وہاں پر اور فوج جو ہے وہ امریکہ کی متی ہے
جی,
تیونس کی بھی اور مصر کی بھی. تو اس سے حاصل کیا ہوا ہے, مصر کے عوام کو کیا ہوا ہے, تیونس کے لوگوں کے کیا ہوا ہے اور لیبیا کے لوگ تو بیچارے بمباری کے نتیجے میں مارے جا رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں, ان سے معلوم نہیں کس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی ان کے لیے ان کی تیل کی دولت جو ہے وہ ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے اور اس لیے وبال جان بن گئی ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے وہاں مفادات ہیں. اور اس کام میں دیکھیے اٹلی اور فرانس جو ہیں وہ جو لیبیا کا آپریشن ہے لیبیا کی مہم جو ہے اس میں پیش پیش ہیں. اٹلی پوری 20ویں صدی کے دوران ایک کلونیل پاور تھا جس نے لیبیا پر مسلط کیا ہوا تھا.
پروفیسر صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر. اس وقت چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی زیدی صاحب جیسا کہ آپ کے پیش نظر ہے امریکہ اور مغربی طاقتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم لیبیا کے عوام کی حفاظت ان کی جان کی سلامتی و تحفظ کے لیے میدان میں اترے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ہوائی حملہ شروع ہوا ہے لیبیائی پر دوہری مصیبت ٹوٹ پڑی ہے. پہلے تو قذافی کی فوجیں ہی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھیں اور اب یہ بمباری کر رہی ہیں, اور ابھی دیکھیں کہ گریانہ اور مزدہ شہروں پر کل رات ہی رہائشی علاقوں پر نیٹو کے جنگی طیاروں نے حملہ کیا، تو یہ کون سا تحفظ ہے جانی لیبیائی شہریوں کا؟
جی میں آپ کا سوال پوری طرح نہیں سن پایا، کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے، آخری دو فقرے میں سن پایا ہوں. یہ دیکھیے، یہ جو شہری تحفظ اور انسانوں کی جان بچانے کا جو بہانہ ہے، یہ تو ہم نے 1990 میں بھی دیکھا، عراق وار جب گلف وار ہوئی تھی اس کے بعد، اور فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے اس وقت نو فلائی زون کا معاملہ کریٹ کیا تھا، اور اس کے بعد عراق میں اتنا بڑا کنفلکٹ ہوا، اتنا سول کنفلکٹ ہوا تھا، اتنا خون بہا کہ اس کے بعد یہ جواز بن گیا کہ اب نیٹو کی فوجوں کا وہاں آنا ضروری ہے اور امریکن فورسز کا وہاں آ کر انسانی جانوں کو بچانا ضروری ہے. اور عملاً کیا ہوا، 2003 میں جب یہ لوگ وہاں آئے تو 300,000 انسانوں کا قتل بش اور بلیئر کے ہاتھوں پر ہے. انہوں نے انسانوں کو بچانے کے نام پر آ کر انہوں نے وہاں 300,000 انسان، معصوم انسان مارے. اور یہ اس وقت چونکہ یہاں پر ڈیمونسٹریشن اور پوری دنیا میں ایک ریئیکشن بلٹ ہوا تھا اس بات پر کہ یہ وار اللیگل ہے، امورل ہے، یونائٹڈ نیشنز کی سپورٹ اس کو حاصل نہیں ہے، تو اب کی بار انہوں نے بہت ہوشیاری سے یہ 1973 کا جو ریزولوشن لائے ہیں، یہ ایک تو امریکن انٹروینشن، میں سمجھتا ہوں لیبیا میں یہ واضح طور پر امریکن انٹروینشن ہے جس کو انہوں نے قانونی تحفظ دیا ہے یونائٹڈ نیشن کے 1973 ریزولوشن سے، اور اس میں برطانیہ اور فرانس اس کے ساتھ ہیں، جبکہ اس ریزولوشن کے اگینسٹ تحفظات ہیں 53 ممالک کے، افریقن یونین کے اور لیبیا، کیوبا، برازیل، انڈیا، چین، رشیا اور کئی وہاں تحفظات رکھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایک ملٹری ایکشن کا وجہ جواز نہیں بننے دیں گے اور اس کو نہیں بننا چاہیے. لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اس ریزولوشن اور انسانی جانوں کے تحفظ کے نام پر اب تک غالباً 200 کے قریب امریکن جو جہاز اور برطانیہ اور فرانس کے جہازوں سے جو بمباری کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں تقریباً 200 کے قریب انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ان کا قتل ہوا ہے. اور اصل معاملہ جیسے کہ میں نہیں سن پایا باقی دو مبصرین کی بات، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت لیبیا پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے. فیصلہ تو وہاں کے عوام کو کرنا تھا یا کرنا چاہیے، لیکن جو وہاں پر یہ باغی گروپ بھی نظر آتا ہے، یہ ظاہر تو لگتا ہے کہ شاید حکومت کے خلاف جینون ایک تحریک ہے، یہ پلانٹیڈ تحریک ہے. اور اس میں بہت پہلے یہ باتیں کچھ آنا شروع ہو گئی تھیں کہ لیبیا کو یہ اگر پوری طرح سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے مغربی استعمار کی طاقتیں، تو کم از کم بن غازی پر یہ قبضہ کرنا چاہیں گے تاکہ وہاں سے جو مکمل لیبیا کا تیل بہت کم اس پہ خرچ آتا ہے، اس کو ریفائن کرنے میں بہت رچ آئل ہے، اور بہت لوکیشن ایسی ہے جہاں سے یورپ میں بہت آسانی سے وہ پہنچ سکتا ہے. تو بن غازی یعنی ایسٹ لیبیا اور ویسٹ لیبیا کی شکل، اگر یہ معاملہ جاری رہا تو شاید یہ لیبیا کی تقسیم تک جا پہنچے. اور کل اوباما نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ہفتہ یا مہینے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اوپن اینڈڈ وار ہے، اس کا کوئی وقت کا تعین، اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ آج یہاں پر جو میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ہیلری کلنٹن سے لے کے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اور 35 ممالک کے سربراہ اور فارن منسٹرز آئے ہوئے ہیں، وہ یہ طے کر رہے ہیں. ابھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ لیبیا کے قذافی کے جانے کے بعد لیبیا کا مقدر کیا ہوگا، ہے کہ لیبیا کے حکومتیں کس طرح سے قائم ہوں گی اور کون کون فورسز وہاں پر ہوں گی. یہ بندر بانٹ ہے جو مل کر یہ بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قذافی جاتا ہے तो फिर लीबिया की क्या कंडीशन होगी और उसमें इनका क्या रोल होगा, और अगर नहीं जाता तो कितना हिस्सा है जिस पे कब्जा करके तेल पर कब्जा और जोग्राफियाई लोकेशन पर कब्जा कर सकते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स की बात है और सिविल लिबर्टीज और इंसानों की जानें बचाने की बात है तो सिक्स फ्लीट तो खड़ा हुआ है बहरीन में, और बहरीन में सऊदी अरब की फौजें आके वहां पर कत्लेआम कर रही हैं और वहां पर अवाम नहते हैं। यहां पर तो ये असला दिया गया है लीबिया के इन बागियों को और वो बेचारे चलाना भी नहीं जानते, और महीने भर पहले उनमें कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था, कोई स्टूडेंट्स थे, उनको असला पकड़ा दिया गया। वो अच्छा जो बहरीन में तो आम आदमी बेचारा नहिता है, वो तो फूल लेकर अपनी तहरीक उसने शुरू की, तो वहाँ पर इंसानी जो जानें मरवाई जा रही हैं सऊदी अरब की हुकूमत के ज़रिए और उनके सिपाहियों और फौजियों के ज़रिए, तो वहाँ पर ये जो इंसानी जान है वो इनको क्यों नहीं नज़र आ रही, जबकि वहाँ तो ये इनका सिक्स्थ फ्लीट खड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये सब ऐसे ही जालसाजी है, ये होम कंजम्पशन के लिए, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए ये इस्तलाहात इस्तेमाल की जा रही हैं। यहाँ पर अमेरिका का चूंकि प्रेशर बहुत है कि अब हम दो वॉर्स के बाद तीसरी वॉर में नहीं जा सकते, तो उन्होंने बरतानिया और फ्रांस को सामने किया हुआ है और
मैं फिर आ जाऊंगा जैदी साहब,
अमेरिका की अपनी एक इंटरवेंशन है, एक नया महाज है।
जी मैं दोबारा हाजिर हूँगा। जावेद सिद्दीक साहब, जैसा कि भी आपने सुना जैदी साहब के जबानी और खुद प्रोफेसर अतर रहमान साहब की जबानी, बात यह है कि ओबामा ने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत की तब्दीली बड़ी गलती होगी और हम हुकूमत तब्दील नहीं करना चाहते, और अभी जैसा कि सुना कि लंदन में जो इजलास हुआ, मीटिंग हुई, उसमें यह हुआ कि कजाफी के जाने के बाद क्या किया जाए और क्या ना किया जाए इस पर गौर खौज हो रहा है, तो क्या कहीं से ऐसा महसूस होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका और मगरबी ममालिक कर्नल कजाफी को इख्तदार में बाकी रखना चाहते हैं, कहीं से कोई ऐसी ख्वाहिश उनके अंदर पिनहा है?
मेरा ख्याल है कि वो कर्नल कद्दाफी को शायद इकतदार में न रख सके, और चूंकि आपको पता है कि कर्नल कद्दाफी जो है उनकी पॉलिसीज जो हैं वो मगरब के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन रही हैं, और वो जो वाक़या जहाज़ गिराने का हुआ था उससे लेके और बहुत सी ऐसी तहरीकें जिनको कर्नल कद्दाफी जो है वो उनकी पुष्ट पनाई करते रहे, और उनके पीछे कर्नल कद्दाफी जो है वो माली इमदाद भी इन तहरीकों को देते रहे, जिसको मगरब जो है वो टेररिज्म कहता है, और बहुत से ममालिक में उनका ख्याल है कि लीबिया जो है वो उन मुल्कों को डिस्टेबल करता है वहाँ के कुछ ग्रुप्स को, कुछ लोगों को माली इमदाद देकर। और ये एक आपको ये भी पता है कि इन्होंने एक मरतबा कर्नल कद्दाफी को इससे पहले भी 80 के दहाई में कत्ल करने की कोशिश की थी, और वहाँ जो इनका जो घर है वहाँ पे या जो महल है उस पर बम्बार्डमेंट की थी, और उसमें ये बच गए थे और इनकी एक बेटी जो है उसमें जान भाग हुई थी। तो उस वक्त भी ये डर रहे थे कि कर्नल कद्दाफी से जान छुड़ाई जाए, उसको कर्नल कद्दाफी को मगरबी मीडिया जो है वो एक ख़तरे की अलामत समझता है, और वो हमेशा कहते रहे कि वो एक बड़ा मैवरिक लीडर है, ऐसा लीडर है जिसके ऊपर कोई नहीं कहा जा सकता कि वो अगले मरहले में या अगले लम्हे में क्या करेगा, अनप्रिडिक्टेबल है। तो और दूसरा, तवील अरसा हो गया कर्नल कद्दाफी को इख्तदार में आए हुए, और उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि उस मुल्क में एक गुस्सा और एक रिजेंटमेंट मौजूद है, जो कि लोग चाहते थे कि वहाँ तब्दीली आए, जिस तरह मिस्र में हुआ है, जिस तरह बाकी मुल्कों में हो रहा है, कि वहाँ वो जेन्युइनली हकीकी मानों में लोग आते हैं, और लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक और जमहूरी तब्दीली आए और एक पीसफुल तब्दीली आए। और बदकिस्मती ये है कि जितने हुक्मरान जिनके खिलाफ ये तब्दीली आ रही है वो तशद्दुद पे उतर आए, और उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की, उनको कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। कर्नल कद्दाफी भी इसमें कामयाब नहीं होंगे, अगरचे मगरब जो है वो, अगर ये जो आपने जिस इजलास की बात की है उस पर वो यकीनन मुतफक्कर होंगे क्योंकि एक कर्नल कद्दाफी ये कह चुके हैं कि ये जो तहरीक है मेरे खिलाफ इसके पीछे अलकायदा है, और इसलिए वो ज़रूर इस पर परेशान होंगे कि अगर ये लोग जिनको के वो सपोर्ट कर रहे हैं या जो जो लोग आके आ जाएंगे उनकी क्या सोच होगी, उनकी फिक्र क्या है, क्या वो लीबिया को एक जमी मुल्क बनाना चाहेंगे या जैसे मगरब की अपनी परेशानी और फिक्र है लीबिया जो है एक और इंतहा पसंदी का मरकज बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो इस पर ज़रूर गौर कर रहे होंगे कि अगर कर्नल कद्दाफी को जो रिप्लेस करेगा, जो उनकी जगह आएगा, जो इख्तदार से हुकूमत बनेगी वो कैसी होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मगरब नवाज हुकूमतें बने, जहाँ जहाँ लोग उठ खड़े हुए हैं तवील आमरीत के खिलाफ और अपने हुक्मरानों को बदलना चाहते हैं। मगरब और अमरीका की पॉलिसी ये है कि मगरब नवाज और अमरीका नवाज लोग जो हैं वो वहाँ पर आएँ, और कुछ वो नाम भी फ्लोट करते हैं, कुछ नामों को वो आगे लेके आते हैं कि फलां मसलन मिस्र की सूरत में उन्होंने अलबरादी को कहा कि वो अपोजिशन का लीडर है, लेकिन आपने देखा कि उस पर इतफाक़ राय नहीं है लोगों का। तो यहाँ भी वो कोशिश करेंगे कि कर्नल कद्दाफी के मुकाबले में किसी एक शख्स को आगे लाया जाए और सारी अपोजिशन जो है वो उसको लीडर तस्लीम कर ले, और फिर वो जो पॉलिसियाँ बनाए, अगर वो इक्तदार में आता है और वो पॉलिसियाँ जो तश्कील देगा वो पॉलिसियाँ अफ्रीका और मगरब के मफादात के मुताबिक हों, कोई ऐसा शख्स जो हकीकी मानों में लीबिया को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी मुल्क बनाए, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ
कर रहे हैं जैसे कद्दाफी हट जाता है
जी,
तो उसकी जगह कोई ऐसा शख्स हो जिसे वो मॉडरेट कहते हैं, इतदाल पसंद उनको एक उनकी असलाह है, और वो ये भी चाहेंगे कोई ऐसा शख्स ढूंढ रहे होंगे जो लंदन में या वॉशिंगटन में या किसी और जगह पढ़ा हो,
यकीन
और उसकी वहाँ तरबियत हुई हो ज़हनी और फिक्री, तो ऐसे लोग उनको सूट करते हैं, मुनासिब हैं उनके लिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि कर्नल कद्दाफी की जगह किसी मगरब नवाज शख्स को आगे ला के उसको इक्तदार उसके हवाले करें
जी। अली जाफर जैदी साहब, जैसा कि अभी जावेद सिद्दीक साहब फरमा रहे थे, एक जिस तरह से शुमाली अफ्रीका से लेकर मशरक वस्ता तक अवामी बेदारी और इस्लामी बेदारी की लहर उठी है, उसके पेश नज़र अमरीका और उसके हवारी ये तवक्को करें तो वजह होगी कि अब भी इन खित्तों में और इन इलाकों के मुल्कों में ऐसी हुकूमत या ऐसे अफराद बरसरे इख्तदार आएंगे जो अमरीका या मगरिब नवाज होंगे।
यकीनन वो ये चाहें, और ये जो तहरीकें उठी हैं ये हर इलाके में ज़रा डिफरेंट हैं। वेस्ट इसको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मिडल ईस्ट है, ये यकीनन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज है, लेकिन ट्यूनिस और इजिप्ट का मामला तो काफ़ी समझ में आता है, लेकिन आगे जो मामला इन्होंने चलाया है वो थोड़ा सा संजीदा इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। देखिए, ये जो रेजोल्यूशन आया है यूनाइटेड नेशन का, ये मगरबी इस्तेमार के लिए बहुत अहम है, लेकिन वो हुकूमतें जो अमेरिकन टेररिज्म के खिलाफ हैं मिडल ईस्ट में, उनके लिए इसको बहुत गौर व फिक्र की इसमें और तशवीश की बात है कि अमेरिका ने ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन से जो लिया है वो किसी भी मुल्क में, मसलन सीरिया जो है वो उसको हमेशा चैलेंज करता रहा, हिज़्बुल्लाह की तंजीम है, हमास है, ईरान है, तो इस रेजोल्यूशन की बाद किसी भी जगह जहां पर वो ये इंसानी जानों का तहफ़ करने का नारा लेकर अपनी फ़ौजें उतार सकते हैं, और वो हुकूमतें जो चैलेंज करती रही हैं वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को, उनको कमज़ोर करना, डिस्टेबलाइज करना, उन रिजीम चेंज करना, ये इनका हदफ है। यहाँ पर भी वो कहते तो रहे हैं कि वी डोंट वांट रिजीम चेंज इन लीबिया, लेकिन अमलन वो इस रिजीम को चेंज करना चाहते हैं। बैन ही आपने देखा दो दिन से सीरिया में के साउथ में से ये दर्रा की जगह से ये प्लांट हुआ है, फिर से इसी तरह का मामला जैसे बेनगाज़ी में प्लांट किया गया था, और वहां से ये मूवमेंट ऊपर तक ले जाना चाहेंगे जहां पर इस सीरियन गवर्नमेंट की जो इस्तेहकाम है वो, और बाय नहीं इसके बाद अगला हदफ होगा ईरान। तो मैं समझता हूं कि इस रीजन में ये हुकूमतें तो खैर बहुत एक डिक्टेटराना और एक अपनी आगे चल गई थी, अपनी नस्ल को एक डायनेस्टी क्रिएट करना शुरू कर दी थी इन्होंने, तो अवाम भी इनसे बहुत नालां थे। लेकिन ये भी देखने की बात है कि इन्हीं हुकूमतों ने जहां पर, और अब अरब वो हुकूमतें डिक्टेटर्स जो अमेरिका की पुश्त पनाही पर मिडल ईस्ट में थीं और हैं, उन्होंने अवाम के हकूक माशी कभी नहीं दिए, जबकि लीबिया में बहरहाल तेल का कुछ ना कुछ हिस्सा अवाम तक गया, उनकी डेवलपमेंट हुई। द सेम वे सीरिया में एक डेवलपमेंट अवाम के लिए हुई है, उनकी बेहतरी हुई है। ईरान में बहुत बड़ा इनकलाब आया है। तो ये जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन का 1973, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है दुनिया भर के तमाम ममालिक में, जहां पर हजार दो हजार आदमी खड़े होकर कहें हमारा, हम पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है और अमेरिका और नेटो की फौजें वहां पर पहुंच जाएं। तो ये, एक तो ये बात थोड़ा सा समझने की है। दूसरा है कि मिडल ईस्ट में जो भी ये तब्दीली हो रही है, यहाँ बहरहाल बादशाहतें तो उस तरह से शायद ना रहें, क्योंकि अमेरिका को भी और वेस्ट को भी सूट नहीं करता, क्योंकि दे आर टोटल लाइबिलिटीज नाउ, और इन पे जितना खर्चा होता है, इजिप्ट में कितने बिलियन उनको हर साल देना पड़ता था उस हुकूमत को बचाने के लिए, तो अब उन्हें सूट करता है कि एक कमज़ोर सी अनस्टेबल गवर्नमेंट्स रहें और वो पपेट गवर्नमेंट्स टाइप, जैसे अब यहाँ इंटरिम लीबिया की इंटरिम गवर्नमेंट तो इन्होंने बना दी है। आज जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर उनके सरबराह बैठे हुए हैं। ये अलग बात कि यहाँ पर उस मीटिंग के बाहर कोई सैकड़ों हजारों लोग, मिडल ईस्ट के नहीं बल्कि अंग्रेज, ये नारा लगा रहा है कि हैंड्स ऑफ लीबिया, डोंट डू बम्बारमेंट इन लीबिया, मतलब लीबिया में आप बम्बारी मत करें, आम इंसानों को मत मारें। तो ये जो थोड़ा सा है ना, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें बाज़ूकात नहीं सेटल होती, और इसी तरह CIA के जो और अमेरिकन पेंटागन के प्रोग्राम्स होते हैं उसकी तरह भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती। तो मिडल ईस्ट में ओवरऑल एक बहुत ही अनस्टेबल सा मामला हो जाएगा, बहुत ही कमजोर सी हुकूमतें होंगी, और उसके लिए ये
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। चलते हैं लाहौर जहां पर मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर प्रोफेसर अतौर रहमान साहब। प्रोफेसर साहब, आप देखें कि बात मगरबी मुल्कों की जब आती है तो ये कहते हैं कि हम दुनिया में जमहूरियत के हामी हैं, अवामी मुतालबात के हामी हैं। गुज़िश्ता डेढ़ महीने से ज़ायद अरसे से लीबिया के आवाम ज़ाहिर अपने हकूक के ही तो बात कर रहे हैं, अपने हकूक की बाजियाबी का ही मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बाराक ओबामा हो या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हो या दीगर मगरबी हुकाम हो, ये कहते हैं कि हम कर्नल कज़ाफ़ी को इख्तदार से हटाने के हक में नहीं है, या ये जो फ़िज़ाई कार्रवाई हो रही है उनको हटाने के लिए हम ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और बाराक ओबामा ने यहाँ तक कह दिया है कि इख्तदार से हटाना या हटाने के लिए कार्रवाई करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये तो अवामी मुतालबात तो ये हैं कि कर्नल कज़ाफ़ी जो 42 साल से हैं वो जाएँ, और ये कह रहे हैं कि इख्तदार से हटाना एक बड़ी गलती होगी। तो यहाँ अवामी मुतालबात से टकराव नहीं हो रहे इनके नज़रियात के?
देखिए, बात यह है कि 1991 में जब अमेरिका ने सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत और उन करारदादों में ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी, सद्दाम हुसैन के इराक से कुवैत पर उसका फौजी कब्जा खत्म करा लिया, तो उसके बाद अमेरिका ने जंग बंदी का ऐलान करके कहा कि हमारे पेशे नजर सद्दाम हुसैन को हटाना नहीं था, हम कुवैत को आजाद कराना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर बगदाद पर फ्लाइंग जोन मुसल्लत कर दिए गए, और उन नौ फ्लाइंग जोन की वजह से इराक का मुकाबला कर दिया गया, और उसके नतीजे में इराक के जो बच्चे हैं वो भूख से तिलकने लगे। फिर फूड फॉर ऑयल का एक धोखेबाजी की स्कीम शुरू की गई, फिर 2003 को इराक पर एक झूठे बहाने पर दोबारा हमला करके सद्दाम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया, और वो जो बहाना लगाया गया था झूठा कि वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार पाए जाते हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं मिलता था। अब इस मिसाल को सामने रखिए और लीबिया की तरफ आइए। लीबिया में तो अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों ने ताकत के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं दी, और इसके बावजूद ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और नो फ्लाई जोन कायम किए जा रहे हैं, और वही बात की जा रही है कि हम कदाफी को हटाना नहीं चाहते। कि नो फ्लाई जोन के वक्त सद्दाम हुसैन के बारे में कही जा रही थी, और सद्दाम भी उतना ही बड़ा डिक्टेटर था जितना कदाफी है, लेकिन और अवाम दोनों के पसंद नहीं करते थे, लेकिन अवाम किसको पसंद करते थे ये अमेरिका भी नहीं चाहता था। ना इराक में अवाम की पसंदीदा हुकूमत आए, ना वो लीबिया में अवाम की पसंदीदा हुकूमत चाहता है। दोनों तेल के जगह तेल के जखीरे पाए जाते हैं। इराक में दूसरा बड़ा जखीरा है आलमी अरब का तेल का, और लीबिया में अफ्रीका का सबसे बड़ा जखीरा है। ये दोनों में मुमासलत पाई जाती है। अभी ताजा अभी इसी वक्त हिलरी क्लिंटन का ये बयान आया है कि हम उस वक्त तक ये जारी रखेंगे ऑपरेशन जब तक मकासद पूरे नहीं कर लिए जाते। वो मकासद क्या है? तंसीबात पर कब्जा करना है और उनकी तजारत को अपने हाथ में लेना है। क्या कज़ाफी की हुकूमत को खत्म कर देना है? क्या वहां पर अपनी मर्जी के वो जो साहब हैं कर्नल उबैदी या मुस्तफा जलील, उनकी हुकूमत को लाना है? इस बात की इसमें से किसी एक बात को कतई तौर पर अमेरिका या उसके नाटो के ममालिक बयान नहीं करते, इसलिए कि वो बेअक वक्त तीनों मकासद चाहते हैं। वो तेल की तजारत को भी लीबिया की अपने अजारादारी में लाना चाहते हैं, वो कज़ाफी की हुकूमत को भी खत्म करना चाहते हैं, वो अपने एक दो पपेट्स और आला कार की वहाँ हुकूमत भी, वहाँ की मुकामी और जमहूरी के नाम पर मुसल्लत कर रहे हैं। अमरीका नया तजर्बा कर रहा है पूरे आलम इस्लाम और आलम अरब में, वो जमहूरियत का CIA एडिशन ला। इराक में भी एक ऐसी हुकूमत है और अब लीबिया में भी वैसी हुकूमत मुसल्लत की जा रही है। अफगानिस्तान में इसका तजर्बा किया जा रहा है। ना अफगानिस्तान में अमन कायम हो सका है, ना इराक में कत्ल व गारत बंद हुई है, और लीबिया भी एक टर्मॉइल में चला जाएगा। और आप देखिए कि जब 1918 में बालफोर मुआहदा हुआ था तो उस वक्त ये तय किया गया था कि इसराइल की सहयोगी रियासत आलमी अरब के सीने पर इसलिए कायम की जाएगी कि वहां मुसलसल इंतशार और लड़ाई की सूरत हाल जारी रहे और उससे मगरबी ताकतें अपने मफादात का हसूल कर सके। इसी इंतशार, इसी टर्मॉइल, इसी तजाद को अब मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है। अमरीका के मकासद बड़े वाक़े हैं, असल मसला हम मुसलमान मुल्कों या आलम अरब की हुकूमतों का है। देखिए ये जो अरब लीग है इसने नो फ्लाइंग जोन के हक में करारदाद की हमायत की थी, अब वही अरब लीग कह रही है कि जी आपको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, आपने पहले एक बेहुदा सी करारदाद की तो हमायत कर दी है, अब आप किस मुंह से कह रहे हैं ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? उन्होंने क्या ताकत का इस्तेमाल आपसे पूछ कर करना था? आपने उनके हाथ में असला दे दिया है, उनके हाथ में एक करारदाद ऐसी पकड़ा दी है जिससे वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आप अवेला मचा रहे हैं। ये असल में सारा मसला जो है हमारे अंदर भी पाया जाता है।
जी जावेद सिद्दीक साहब, बात हो रही है अमरीका के अजायम और उसके मकासद की, तो जिस तरह से अवाम बेदार हुए हैं और जिस तरह से बेदारी की लहर उठी है और जिस तरह से तुनिस से लेकर मिस्र और मिस्र से लेकर लीबिया और लीबिया से लेकर बहरीन और यमन तक जो देखा जा रहा है, उसमें जहां अपने अपने डिक्टेटरों के खिलाफ नफरत का ऐलान किया जा रहा है, वहां उससे बढ़कर इसराइल और अमेरिका के तई नफरत और बेजारी का ऐलान किया जा रहा है, तो ये बात क्या अमरीका या मगरबी हुकाम को समझ में नहीं आ रही कि अब उनके पैर इस इलाके से उखड़ा चाहते हैं और उखड़ चुके हैं और अब वहां पर उनकी मर्जी नहीं चल सकेगी?
देखिए ये जो प्लान था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मिडल ईस्ट, ये जॉर्ज बुश के दौर में इन्होंने शुरू करना था, क्योंकि इनकी जो सर्वेस थी और जो इनके जो खुफिया इन्होंने जो रायामा के सर्वे किए हुए थे उनमें इनको पता था CIA को कि अवाम जो हैं इन हुकूमतों से जो अमेरिका ने मुसल्लत की हुई हैं इस इलाके पे लोग तंग आ चुके हैं और ये लावा किसी वक्त फटेगा। تو انہوں نے بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے ایران کی جو مثال ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج تک سی آئی اے اور امریکی جو پالیسی ساز ہیں وہ اس دکھ میں ہیں, اس دکھ سے باہر نہیں آئے کہ ایران میں ان کا ایک پسندیدہ حکمران تھا اس طرح چلا گیا اور ان کو خبر نہ ہوئی, اور وہ جو نئی حکومت جو امام خمینی نے وہاں پہ انقلاب پا کیا وہ صدمہ ابھی تک وہ بھول نہیں پائے. چنانچہ انہوں نے اس سے ایک سبق سیکھا ہے, ایک لیسن لرن کیا ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی جو آرزو ہے اور جو خواہش ہے جو انگڑائیاں لے رہی ہے لوگوں میں, یہ ایک نہ ایک دن اس آتش فشان نے تو پھٹنا ہے. چنانچہ انہوں نے اب یہ کوشش وہ کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ایسی نہ ہو کہ جو اسرائیل کے خلاف ہو, یعنی یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ ان نئی حکومتوں کا ہدف بن جائے اور یہ سارے حکمران جو نئے آئیں جمہوری طور پہ منتخب ہو کے عوام کی آرزوؤں کے مطابق, تو وہ یقیناً اسرائیل جو ہے ایک ناجائز ریاست ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک اتفاق رائے ہو سکتا ہے, اس کو یہ روکنے کی کوشش کریں گے اور ایسے لوگ لائیں گے جو کہ ان کی بات سننے والے ہوں, ان پر ان کا اثر چلتا ہو, اور یہ وہ کوشش کریں گے کہ کوئی جینوئن حقیقی لیڈرشپ جو کہ عرب عوام کی خواہشات کی عکاسی کرتی ہو وہ نہ آج, اور یہی ان کا سارا پلان ہے اس وقت جس پہ یہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور ان کی مڈل ایسٹ کی جو پالیسی ہے امریکہ اور یورپین یونین کی, وہ دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے, ایک تو تیل اور دوسرا اسرائیل. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو بچایا جائے, اس کا تحفظ کیا جائے, اور دوسری طرف ان کی خواہش ہے کہ یہ تیل کے جو ذخائر ہیں جو مغرب
کے
سارے اقتصادی نظام کو چلا رہے ہیں, یہ سارا تیل جو ہے مڈل ایسٹ سے جا رہا ہے, تو ان کی کوشش ہے کہ تیل کے ذخائر بھی ان کے ہاتھ نکلیں,
بہت بہت شکریہ,
دوسری طرف اسرائیل کو کوئی گزند نہ پہنچے. تو ساری کی ساری جو پلاننگ ہے اور ساری کی ساری جو اسٹریٹجی ہے,
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی, وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کے پیش نظر دو ہی چیزیں, ایک تیل اور دوسرے اسرائیل کا تحفظ. لیکن جس طرح سے عوامی بیداری کی لہر اٹھی ہے, اور جس طرح سے بھی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ مصر سے عوام کے دباؤ کی وجہ سے جو موجودہ عبوری حکومت ہے اس نے مجبور ہو کر اسرائیل کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دی, تو اس طرح سے عوامی بیداری کی لہر اٹھی ہے, اس کے پیش نظر نہ تو اب امریکہ اور نہ ہی وہ اسرائیل کو بچا سکیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سے دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.